अरमान अरहम को छोड़कर बाहर निकला था। जोया कमरे में किसी को ना पाकर उठ बैठी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगी। वो अपनी ही सोच में खोई थी कि अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। जोया झट से लेट गई और बेहोशी का नाटक करने लगी। तभी अरमान कमरे में आया और सीधा जोया के पास जाकर बैठ गया। उसने अपनी उंगलियों से जोया के होठों को छुआ। जोया थोड़ी घबरा गई, पर उसने अपने ऊपर काबू रखा। उसने उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वो होश में है और सब सुन और देख रही है। उठ जाओ छोटी मालकिन, तुम्हें बहुत सी तकलीफों का हिसाब देना है स्वीटी, अरमान बोला। अरमान जोया को छूते हुए ही बोल रहा था, तभी डॉक्टर एक नर्स के साथ कमरे में आए। सर, मैडम को हमें इंजेक्शन लगाना होगा, इससे इनके होश में आने की संभावना बढ़ जाएगी और आज ही होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, लगाओ इसको इंजेक्शन, अरमान ने कहा। इंजेक्शन की बात सुनकर जोया की सांसें थम सी गईं। बेहोश होने के बाद उसे असंख्य इंजेक्शन लग चुके थे, पर अब जब वो होश में थी तो वो खुद को इंजेक्शन कैसे लगवा सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बचपन से ही इंजेक्शन से डर लगता था। उसे अच्छे से याद था, एक बार बचपन में बीमार पड़ने पर उसके बाबा ने हवेली में डॉक्टरों की लाइन लगा दी थी। उसने जब हाथ में इंजेक्शन देखा था तो वो बेड के नीचे छिप गई थी और रो रोकर पूरी हवेली गूंज उठाई थी। तभी डॉक्टर ने नर्स से कहा, ये क्या इंजेक्शन? डेक्सटोमेट 200 mcg इंजेक्शन, तो तुम लेकर ही नहीं आई, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? डॉक्टर घबराकर अरमान को देखता है और जल्दी से नर्स को इंजेक्शन ले आने को भेज दिया। जोया अपनी सोच से बाहर आ गई थी और उसे पता था कि अब उसे उठने का समय आ गया है। नर्स के जाते ही जोया ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों में हलचल करना शुरू कर दिया। अरमान ने ये देख लिया क्योंकि वो उस वक्त उसके पास ही बैठा था। डॉक्टर, ये देखो, इसने अभी अपनी उंगलियां हिलाई हैं, डॉक्टर ने कहा। ओ हाँ सर, देखा मैंने, आप टेंशन मत लो, मैडम को अभी थोड़ी देर में पूरा होश आ जाएगा। डॉक्टर, एक काम करो, उसे वो इंजेक्शन दे दो ताकि ये जल्दी होश में आ जाए, अरमान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया, जी सर, अभी नर्स इंजेक्शन लेकर आने वाली है, आते ही हम मैडम को इंजेक्शन दे देंगे। इतने में जोया आवाज लगाते हुए उठ बैठी और जल्दी से बोली, नहीं मुझे सुई मत लगाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, होश में हूँ। डॉक्टर हैरत से कभी अरमान का कभी जोया का चेहरा देखता रहा। तभी अरमान आराम से चेयर पर बैठते हुए बोला, आप जाइए डॉक्टर, हमारी मैडम को होश आ गया है, अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है। डॉक्टर जल्दी से जी सर कहकर कमरे से बाहर निकल गया। अरमान जोया को देखते हुए बोला, स्वीटी मुझे पता है तुम्हें बहुत पहले ही होश आ गया था। जोया हैरानी से अरमान की ओर देखते हुए बोली, ओ माय बेबी, आपको समझ नहीं आया, जब डॉक्टर और मैं बातें कर रहे थे तब एक मक्खी उड़कर आपके नाक पर बैठ गई थी, और स्वीटी एक बेहोश इंसान नाक पर बैठी मक्खी को कैसे उड़ा सकता है, अरमान जोया का मजाक उड़ाते हुए बोला। ओ, जोया को याद आ गया था कि कैसे एक मक्खी उसे बार बार परेशान कर रही थी और उसने कितना काबू करने की कोशिश की थी, पर जब वो मक्खी उसकी नाक पर आकर बैठ गई थी तो उसने उसे अपने दाहिने हाथ से उड़ाया था। जोया ने याद करके खुद को हल्की सी चपत लगाई और मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ इसको बहुत बाद में पता चला, इसको ये नहीं पता चला कि मैं इन दोनों भाइयों की बात सुन चुकी हूँ। तभी अरमान जोया से बोला, स्वीटी काफ़ी दिन हो गए इस हॉस्पिटल में, तुम बोर हो गई होगी, अब तुम्हारी खातिरदारी करने का समय आ गया है, अब हम तुम्हें जिंदगी का असली सबक देंगे। जोया को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। वैसे तो जोया जैसे तैसे भागकर अपने गांव भी जा सकती थी और वहां अपने आदमियों को इकट्ठा करके अरमान अरहम के खिलाफ मोर्चा खोल सकती थी, पर उसे अरमान की ताकत का अंदाज़ा अच्छे से हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो अब कोई और जान नहीं जाने देगी, अरमान अरहम को वो खुद सबक सिखाएगी। जोया ने अरमान से कहा, ओके चलो। जैसे ही जोया बेड से उठकर खड़ी हुई, उसे एकदम चक्कर आ गए। अरमान ने उसे झट से अपनी बाहों में सहारा दिया। जोया लगभग अरमान पर ही निर्भर थी। वो 10 दिन से बेड से नहीं उठी थी और अब अचानक उठकर खड़ी हुई तो वो संतुलन नहीं बना पाई। खैर, अरमान ने उसे बहुत अच्छे से संभाला था और चूंकि जोया उसके बेहद करीब थी तो उसे असहज लगने लगा और वो उसे दूर होने लगी, पर अरमान के सहारे के बिना वो एक पल भी खड़ी नहीं रह पाती। अरमान जोया से बोला, रिलैक्स स्वीटी, तुम ज़्यादा जोर मत दो खुद पर, और ये कहते ही अरमान ने जोया को अपनी बाहों में उठा लिया। तब तक तेजा गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा था। उसने अपने मालिक के आते ही फटाफट गाड़ी का दरवाज़ा खोला, आसपास देखा और अरमान का इशारा मिलते ही गाड़ी लेकर ठाकुर मेंशन की ओर निकल पड़ा। गाड़ी में भी अरमान जोया के कंधों को पकड़कर बैठा था क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, बिना सहारे के नहीं बैठ पा रही थी। जोया की सुरक्षा के लिए अरमान ने एक नर्स को 24 घंटे के लिए रख लिया था। जब तक जोया पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती वो नर्स उसके साथ ही रहेगी। जोया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है। जोया की आँखें अब बंद होने लगी थी, उसे नींद आने लगी थी। वैसे भी वो पूरे 2 बजे से जागी हुई थी। देखते ही देखते उसने अपना सिर अरमान के कंधे पर रख लिया और सो गई।